आर्यन ने इंदर के पास आकर उसकी कंधे पर हाथ रखा। इंदर, उसने नरमी से कहा, तुम घर जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। जय की चिंता मत करो, उसकी छुट्टी हो रही है, मैं उसे घर ले जाऊंगा। तुम खुद को संभालो, तुम बहुत थक चुके हो। इंदर ने सिर झुका लिया, उसकी आंखों में थकान और दर्द साफ दिखाई दे रहे थे। वो धीरे धीरे वहां से बाहर निकल गया। आर्यन कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसने अस्पताल के कमरे की ओर देखा जहां जय सो रहा था। उसके मन में एक ही ख्याल था, अब जय सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है और उसे हर हाल में उसे इस सदमे से बाहर निकालना है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इंदर, तुम्हारे अंकल ने अपनी जिम्मेदारी मुझ पर और जगत पर छोड़ी थी। जगत अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ। तुम्हें और जय दोनों को लेकर फिक्र मत करो, अब से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं हमेशा तुम्हारे और जय के साथ हूँ। आर्यन के शब्द सुनकर इंदर की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधों से बोझ थोड़ा हल्का कर दिया हो। इंदर ने चुपचाप आर्यन को गले लगाया। धन्यवाद भाई, उसने धीरे से कहा और फिर घर जाने के लिए वहां से निकल गया। इधर अस्पताल की पार्किंग में एक और सीन चल रहा था। विक्रांत कपूरिया अपनी कार में बैठा हुआ था। जैसे ही उसने देखा कि जैसिका बाहर आ रही है, वो तुरंत गाड़ी से उतर गया। जैसिका उसे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी और उसके गले लग गई। विक्रांत ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। जैसे बात हुई तुम्हारी, उसने नरम आवाज में पूछा। जैसिका ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, वो सो रहा था, मैं बस उसे देखकर वापस आ गई। विक्रांत ने उसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम फिर मिलने आएंगे, अभी उसे शांति की जरूरत है। जब वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा, हम उससे ठीक से बात करेंगे। जैसिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था, वो बहुत छोटा था और आज इतना बड़ा हो गया है, फिर भी वही मासूम सा चेहरा है। मेरा भतीजा है, मुझे उससे बहुत लगाव है। विक्रांत ने सिर हिलाया और उसे अपनी ओर खींच लिया। हाँ, वो तुम्हारा ही भतीजा है और मैं जानता हूँ तुम्हें उससे बहुत प्यार है। हम बार बार आएंगे उससे मिलने, वो हमें देखकर खुश होगा। जैसिका फिर से विक्रांत के गले लगकर रोने लगी। विक्रांत उसे चुप करवाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब खतरनाक सी मुस्कान उभर आई। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो किसी गहरी योजना के बारे में सोच रहा हो। उसका मन जैसे कोई चालाकी भरा खेल बुन रहा था। जय अब अकेला है और ये सही वक्त है, विक्रांत के मन में ये ख्याल बिजली की तरह कौंधा। विक्रांत ने जैसिका को और कसकर पकड़ लिया और शांत स्वर में कहा, चलो घर चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके चेहरे पर आई वो मुस्कान साफ बता रही थी कि वो कुछ सोच रहा है, कुछ ऐसा जो आने वाले वक्त में सबकी जिंदगी बदल सकता है। उनके जाने की थोड़ी देर बाद ही सानवी भी अस्पताल पहुंची। उसने रिसेप्शन पर जाकर जय का कमरा पूछा और धीरे धीरे वहां की ओर बढ़ी। जैसे ही वो कमरे के नजदीक पहुंची, अंदर से ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई देने लगी। नहीं खाऊंगा मैं, ले जाओ ये सब, सानवी ठिठक गई। अंदर से जय की चीख सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और दर्द भी। नर्स उसे दवाई देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जय ने गुस्से में हाथ मारकर सारी दवाइयां गिरा दी। आर्यन राजवंश उसके पास बैठा हुआ था। उसने गहरी सांस लेते हुए नरमी से कहा, जय बेटा शांत हो जाओ, देखो दवाई तुम्हारे लिए जरूरी है, अगर तुम दवाई लोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे, फिर हम घर जाएंगे। लेकिन जय की आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे ठीक नहीं होना, वो चिल्लाया, अगर मैं ठीक हो गया तो सब मुझे वापस वहीं भेज देंगे, मैं भाग जाऊंगा यहां से। ये सुनकर आर्यन के चेहरे पर दर्द की एक लकीर उभर आई। उसने कोशिश की कि जय को गले लगा ले, लेकिन जय ने चेहरा घुमा लिया। उसी समय कमरे का दरवाजा खुला और सानवी अंदर आई। उसे देखते ही जय की आंखों में चमक आ गई। सानवी दीदी, उसने लगभग चीखते हुए कहा। सानवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कैसे हो जय, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। आर्यन जो अभी तक जय के पास बैठा हुआ था, सानवी को कमरे में आते देख तुरंत खड़ा हो गया। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी। मुझे लगता है कि तुम्हें अभी चले जाना चाहिए, आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा, इसकी हालत ठीक नहीं है। मगर जय ने तुरंत उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अच्छा हुआ दीदी तुम आ गई, मुझे यहाँ जबरदस्ती रखा गया है, मुझे घर जाना है, यहाँ कोई मेरी बात नहीं सुनता, ये लोग मुझे कड़वी कड़वी दवाइयाँ दे रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए दवाई। सानवी धीरे से उसके पास आई और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे सुनो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। उसने अपने हाथ में रखा पैकेट खोला और उसमें से एक छोटा डिब्बा निकाला। तुम्हारी पसंद की कुकीज है, याद है ना तुम्हें मेरे हाथ की कुकीज कितनी पसंद है। जय की आंखें डिब्बे पर टिक गईं। कुछ देर तक वो देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसने डिब्बा उठाया और कुकीज खाने लगा। सानवी उसके बिल्कुल पास बैठ गई। उसने जय को अपने पास खींचा और धीरे से उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। मैं यहाँ हूँ जय, रो लो अगर मन है तो। बस फिर क्या था, जय अचानक फूट फूट कर रोने लगा, उसका छोटा सा शरीर कांपने लगा। मेरे मॉम पापा इस दुनिया में नहीं है दीदी, उनकी मौत हो गई, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। सानवी के गले लगते ही वो इतना जोर जोर से रोया कि कमरे का माहौल भारी हो गया। सानवी की भी आंखें भर आईं। उसने जय के बाल सहलाते हुए कहा, हाँ बेटा मुझे पता है, लेकिन देखो तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे मामू, तुम्हारे चाचू सब हैं तुम्हारे लिए, तुम जितना रोना चाहते हो रो लो, इससे तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। सानवी भी उसे गले लगाकर रोने लगी। वो महसूस कर रही थी कि ये बच्चा अपने दर्द को कब से दबाए बैठा था। ये उसका पहला मौका था जब उसने किसी के सामने अपना दर्द निकाला था। आर्यन जो अब तक कमरे में खड़ा था ये सब देख रहा था। सानवी के शब्द और जय की सिसकियां उसके दिल को चीर रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वो और ज्यादा वहां टिक नहीं पाया और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर और सानवी जय के पास बैठी रही, उसे अपने पास लगाकर सहलाती रही। जय अब रोते रोते शांत हो चुका था, उसकी सांसें हल्की हो गई थी, मानो उसका दिल थोड़ा हल्का हो गया हो। तभी नर्स आई और उसे दवाई दी। इस बार उसने बिना कोई विरोध किए दवाई पी ली, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा खाना भी खा लिया। सानवी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। वो जानती थी कि ये छोटा सा कदम भी जय के लिए बहुत बड़ा था। थोड़ी देर बाद वो कमरे से बाहर आई। जैसे ही बाहर निकली, शिव मेहता जो दूर से ये सब देख रहा था उसके पीछे पीछे आया। सानवी, शिव ने हल्की आवाज में कहा। सानवी रुकी और उसकी तरफ देखने लगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, शिव ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तुम्हारी वजह से जय इतना शांत हुआ है, उसने रो भी लिया, दवाई भी पी ली और खाना भी खा लिया। ये सब उसके लिए बहुत जरूरी था, पिछले कई दिनों से वो किसी की बात नहीं मान रहा था। सानवी सालके से मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें नम थी। शुक्रिया की कोई बात नहीं, उसने धीमे से कहा। मैं और जय बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं बस उसे अकेला महसूस नहीं करने देना चाहती, शिव ने सिर हिलाया। आज उसने तुम्हारे सामने जितना रोया है किसी और के सामने नहीं रोया, शायद वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, बहुत प्यार करता है। सानवी ने एक गहरी सांस ली। मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ, उसने कहा और उसकी आंखों से एक आंसू लुढ़क गया। शिव कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ये उसके लिए बहुत जरूरी था, उसे अपने दिल का बोझ उतारना था, अब शायद वो जल्दी ठीक हो जाएगा। सानवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अगर जय के मामले में कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताइएगा, उसने कहा और वहां से जाने लगी।
शिव मेहता उसे जाते हुए देखता रहा। आज उसकी नजर में सानवी की इमेज बिल्कुल बदल चुकी थी। वो सोचने लगा, इतनी सिंपल सी लड़की, सिंपल सूट में, बिना किसी मेकअप के, बाल चोटी में बंधे हुए, लेकिन दिल से इतनी सच्ची और मजबूत।